पिछले पाठ में बात आई थी कि कहाँ पर समवाय संबंध रहता है और कहाँ संयोग संबंध रहता है। उसमें यह था कि अयुत सिद्ध पदार्थों में समवाय संबंध होता है और युत सिद्ध पदार्थों में संयोग संबंध होता है। उसको समझाने के लिए मैंने बताया था अयुत सिद्ध मतलब जो अलग अलग रहने पर भी सिद्ध रहे वह अयुत सिद्ध होता है, और युत सिद्ध मतलब अयुत सिद्ध मतलब जो अलग अलग रहने पर सिद्ध न रहे वह अयुत सिद्ध है, और युत सिद्ध मतलब जो अलग अलग रहने पर भी सिद्ध रहे। अब जैसे तुरी बेमा जो है वह अलग रहने पर भी तुरी बेमा रहेगा, वह नष्ट नहीं होगा, और वस्त्र भी अलग रहने पर नष्ट नहीं होगा, तो ये दोनों जो हैं ये युत सिद्ध हो गए। किंतु वस्त्र और वस्त्र का जो सूत है ये दोनों कभी भी अलग अलग नहीं रहता है। अगर अलग अलग हो जाएगा तो वस्त्र भी नष्ट हो जाएगा और सूत भी नष्ट हो जाएगा। जैसे बहुत पुराना जो वस्त्र हो जाता है जिसके सूत सब निकलने लग जाते हैं तो वह सूत भी बेकार हो जाता है अलग होने पर, और वस्त्र भी बेकार हो जाता है, तो वह अयुत सिद्ध होता है। तो अब ग्रंथकार स्वयं जो है ना समझ रहे हैं कि ये अयुत सिद्ध की व्याख्या करना जरूरी है, तो वो स्वयं प्रश्न करते हैं कि कौ पुनः अयुत सिद्धौ, ये अयुत सिद्ध जो है ना वो कौन होते हैं। तो इसके बारे में बताया आगे कि ययोर मध्य एकम अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। ताकि ययोह द्वयोह मध्य, जिन दोनों के मध्य में एकम अविनश्यत, एक जो है उसका अविनाश हो माने नाश नहीं हुआ हो, और अपर आश्रितम एव अवतिष्ठते, और दूसरे पर आश्रित होकर के ही अगर वह रहता हो तो उसको हम अयुत सिद्ध कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में देख लीजिए कि ये जो वस्त्र और तंतु जो है ये दोनों अयुत सिद्ध हैं। तो इसमें जैसे तंतु को तो ययोह मध्य, तो जिन दोनों के मध्य में माने तंतु और वस्त्र के मध्य में एकम, एक में से आप किसी को पकड़ सकते हैं, तंतु को भी पकड़ सकते हैं और पट को भी पकड़ सकते हैं। तो मान लीजिए तंतु को हमने पकड़ लिया, तो ययोह द्वयोह मध्य माने तंतु और पट दोनों के बीच में एकम अविनश्यत, एक जो तंतु है उसका अविनाश है, नाश नहीं हुआ है, और अपर आश्रितम, अपर कौन है यहाँ पर, दूसरा, अपर माने दूसरा, दूसरा कौन है, पट है, उस पट में ही आश्रितम अवतिष्ठते, उस पट में ही जो है वह विद्यमान रहता है, उससे अलग विद्यमान नहीं रहता है, इसलिए तौ अयुत सिद्ध हो, इसलिए ये दोनों जो हैं ये अयुत सिद्ध है। अब ये लक्षण तुरी बेमा में नहीं जाएगा, क्योंकि तुरी बेमा में दो कौन है, एक है पट दूसरा है तुरी बेमा, इन दोनों उनमें एक अविनश्यत, जैसे तुरी बेमा को पकड़ लीजिए तो तुरी बेमा का विनाश नहीं हुआ है, लेकिन अपर आश्रितम एव अवतिष्ठते ऐसा नहीं है, वह तुरी बेमा वस्त्र में लटका रहता है क्या, हम जब कपड़ा पहनते हैं तो जिस यंत्र से कपड़ा बना हुआ है वो यंत्र क्या कपड़ा में लटका हुआ रहता है, नहीं, वो यंत्र तो कहीं और रहता है। तो जो एक जिसका विनाश नहीं हुआ हो और दूसरे एक दूसरे पर ही आश्रित रहता हो, अलग नहीं रहता हो, उसी को अयुत सिद्ध कहा जाता है। अब यहाँ पर एक श्लोक में बताया इसी बात को, तदुक्तम तौ एव अयुत सिद्धौ द्वौ, वे दोनों ही अयुत सिद्ध होते हैं, विज्ञातव्यौ ययोर द्वयोः, विज्ञातव्यौ माने उन्हीं दोनों को अयुत सिद्ध समझना चाहिए, जिसमें ययोः द्वयोः अनश्यत एकम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते, जो ऊपर में कहा गया ना वही बात यहाँ भी कहा गया कि ययोह द्वयोह अविनश्यत एकम, माने जिन दोनों में एक जो है अनश्यत माने बिना उसका नाश हुए, अपर आश्रितम एव अवतिष्ठते, दूसरे पर आश्रित होकर के ही स्थित रहता है, उससे मिलकर के उससे जुड़ करके ही स्थित रहता है, उससे अलग रह करके स्थित नहीं रहता, ऐसे दोनों पदार्थों को अयुत सिद्ध समझना चाहिए। तो अभी हमने ये समझा कि जो अयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं उसका संबंध समवाय संबंध होता है, और जो युत सिद्ध पदार्थ होते हैं उनका संयोग संबंध होता है। तो अब यहाँ पर आगे ग्रंथ में उदाहरण बता रहे हैं अयुत सिद्ध कौन कौन होते हैं, ताकि यथा अवयवाभिनौ, अवयव और अवयवी, गुण गुणिनौ, गुण और गुणी, ये समझ रहे हैं कि नहीं? अवयव और अवयवी, अवयव कहते हैं पार्ट को, और अवयवी कहते हैं जिसमें सारे पार्ट एक साथ जुड़े रहते हैं। जैसे शरीर है ना, तो शरीर का हाथ पांव ये सब अवयव हो गया, और हाथ पांव नाक कान आँख जो एक जगह इकट्ठा है वह शरीर है, वह शरीर हो गया अवयवी। तो अवयव और अवयवी, अवयव कहते हैं अंश को, और अवयवी कहते हैं अंशवान को, जिसमें सारे अंश हों वह हो गया अवयव। तो अवयव और अवयवी जो है ये दोनों अयुत सिद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि अवयवी के बिना अवयव नहीं रह सकता, और अवयव के बिना अवयवी नहीं रह सकता। तो जिसके बिना जो नहीं रहे, एक दूसरे के साथ ही रहे, वही तो अयुत सिद्ध होता है। तो अयुत सिद्ध पदार्थ का उदाहरण पहला दिया अवयव अवयविनो, दूसरा दिया गुण गुणिनो, गुण और गुणी। गुणी मतलब वही बात, जैसे धन और धनी होता है ना, तो धनवान, धन से जो युक्त होगा वह धनी होगा, ऐसे गुणी मतलब जो गुण से युक्त होगा वह गुणी होगा। अवयवी माने में भी ऐसे ही, जो अवयव से युक्त होगा वह अवयवी होगा। तो अवयव और अवयवी अयुत सिद्ध पदार्थ हैं, गुण और गुणी अयुत सिद्ध पदार्थ हैं, क्रिया क्रियावंतो, क्रिया और क्रियावान, ये दोनों भी जो हैं अयुत सिद्ध पदार्थ हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि क्रिया क्रियावंतो में जो क्रिया शब्द है ना, इसका अर्थ है कर्म। तो क्रिया माने कर्म, और क्रियावान मतलब कर्मवान। तो कर्म और कर्मवान में कर्मवान, ये दोनों अयुत सिद्ध पदार्थ हैं। फिर कहा जाति व्यक्ति, जाति और व्यक्ति भी जो है ये अयुत सिद्ध पदार्थ है। और विशेष नित्य द्रव्य चेति, विशेष पदार्थ और नित्य द्रव्य पदार्थ, ये दोनों भी जो हैं ये अयुत सिद्ध पदार्थ हैं। इतने ही हैं अयुत सिद्ध पदार्थ, इनके अलावे जो भी हैं पदार्थ हैं, वो सब के सब युत सिद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो अयुत सिद्ध पदार्थ बनने के लिए सबसे जो बड़ी शर्त है वो ये है कि जो अपराश्रितम एव अवतिष्ठते, जो दूसरे में आश्रित होकर के ही रहता है वह अयुत सिद्ध पदार्थ है। तो अब इन सबों में समझना है आपको कि कौन जो है किस में आश्रित रहता है। तो देखिए अवयवी जो है वह अवयव में आश्रित रहता है। अब जैसे अवयवी हो गया घट, और अवयव हो गया कपालद्वय। तो अवयवी जो घट है वह अवयव कपालद्वय में आश्रित रहता है। ऐसे ही ये जो गुण कर्म जाति और विशेष, ये जो चारों हैं, ये चारों गुण जो है गुणी में आश्रित रहता है, कर्म जो है कर्मवान में आश्रित रहता है, जाति व्यक्ति में आश्रित रहता है, और विशेष जो है वह मूर्त द्रव्य में नित्य द्रव्य में आश्रित रहता है। तो आपने देखा ना कि एक दूसरे पर ही आश्रित रह करके ये सब रहते हैं, इसलिए ये अयुत सिद्ध पदार्थ हैं। फिर से सुन लीजिए थोड़ा सा ना, कि ये अवयवाभयविनो में उल्टा क्रम करना है, बाकी में जो है ना सुल्टा क्रम करना है। ये उल्टा सुल्टा क्या है, तो पहले अवयव कहा फिर अवयवी कहा ना, इसका विपरीत कर दीजिए। अवयवी जो है ना वह अवयव में आश्रित रहता है, ठीक है, और बाकी में जैसा क्रम किताब में है उसी क्रम से बोलना है। पहले गुण है, बाद में गुणी है, तो गुण गुणी में रहता है, क्रिया क्रिया में बाण में रहता है, जाति व्यक्ति में रहता है, विशेष नित्य द्रव्य में रहता है। उसमें तो जो क्रम है उसी क्रम से कहेंगे, लेकिन अवयवाभयविनो में उल्टा करेंगे। अवयव अवयवी पर आश्रित नहीं रहता है, बल्कि अवयवी जो है वह अवयव पर आश्रित रहता है। आगे बढ़ते हैं, अवयव्यादयो ही यथा क्रमम अवयवादि आश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः। क्योंकि ये जो अवयवी आदि पदार्थ हैं वो यथाक्रमम, माने जिस क्रम से यहाँ पर, जिस ऑर्डर में यहाँ पर लिखा हुआ है उस क्रम से अवयवादि आश्रिता, अवयव आदि में आश्रित रहते हैं, और अविनश्यन्तः, और और बिना क्षमता माने उसका विनाश नहीं हुआ यदि रहता है तो अब तिष्ठन्ते, अब जब आदि पर ही आश्रित रह करके वो सब अब तिष्ठन्ते माने स्थित रहते हैं। विनश्यत अवस्थास्तु अनाश्रिताः एव अवतिष्ठन्ते अवयव्यादयः, ताकि ये जो है ना अपराश्रित कब रहता है, जब अविनश्यत हो, विनाश नहीं हुआ, आ यदि विनाश हो गया रहेगा तब तो अनाश्रिता, तब तो एक दूसरे पर वह आश्रित नहीं होगा। वही कहते हैं कि विनश्यत अवस्था है, माने विनाश वाली अवस्था में जब अवयवी आदि होते हैं तो अनाश्रिता है एव अवतिष्ठन्ते, तो एक दूसरे पर वह अनाश्रित ही रहता है। कौन? तो अवयवी आदय। यथा तंतु नाशे सति पटः, अब जैसे तंतु का नाश हो जाएगा तो यह विनश्यत अवस्था है, तो तंतु का नाश अगर हो गया तो पट जो है तंतु पर थोड़े आश्रित रहेगा, पट जो है ना अलग हो जाएगा, मतलब तंतु पर आश्रित नहीं रहेगा, अनाश्रित ही रहेगा। यथा वा आश्रय नाशे सति गुणः, अब गुण का आश्रय क्या है, गुणी है ना, तो अगर गुणी का नाश हो जाए तो गुण जो है वह भी अनाश्रित ही रहता है। तो कहा कि ये जो आपने विनाश विनाश की बात की है, ये विनाश क्या है, तो आगे कहते हैं विनश्यत्ता तो विनाश कारण सामग्री सान्निध्यम। विनश्यत्ता मतलब विनश्यतो भाव विनश्यत्ता, विनाश होने का जो भाव है धर्म है उसको विनश्यत्ता कहते हैं। ताकि बिना माने विनाश होना, ताकि विनाश होना क्या होता है, ताकि विनाश कारण सामग्री सान्निध्यम, विनाश का जो कारण सामग्री है, कारण सामग्री मतलब अनेकों कारण, जैसे मान लीजिए धारा का विनाश कारण क्या है, दंडा, अगर दंडे से मारा जाए घरे पर तो क्या होगा, घरे का विनाश हो जाएगा, तो उसमें विनाश किसका है, घट का विनाश है, उसका कारण क्या है, दंडा, और कारण सामग्री, सामग्री मतलब जितने भी कारण हैं सारे, केवल दंडा वहाँ रहने से नहीं होगा ना, दंडा को जोर से उस पर लगना भी चाहिए ना, तो जोर से लगने के लिए कोई आदमी की जरूरत है, किसी उस आदमी के हाथ की जरूरत है, फिर ताकत की जरूरत है, फिर निशाने की जरूरत है, ये सब जितने भी हैं ना कारण, सारे कारणों को कारण सामग्री कहा जाता है, अनेकों कारणों को कारण सामग्री कहा जाता है। और सान्निध्यम माने सन्निधि समझते हैं ना, समीपता, और सान्निध्यम माने समीप में होना, तो विनाश कारण सामग्री का समीप में होना जो है वही विनश्यत्ता कहलाती है। तो विनाश कारण सामग्री का सान्निध्य न हो और एक दूसरे पर ही आश्रित रहे, वही पदार्थ जो है वह अयुत सिद्ध पदार्थ कहलाता है। आगे फिर कहते हैं तंतु पटो अपि अवयवावयविनो, तंतु और पट जो है ये दोनों भी अवयव और अवयवी हैं। इसमें कौन अवयव है, तंतु अवयव है और पट जो है अवयवी है। तेना तयो संबंधः समवायः, इसलिए तंतु और पट जो अवयव अवयवी है उन दोनों का संबंध समवाय संबंध है। क्यों? तो अयुत सिद्धत्वात्, क्योंकि तंतु और पट ये दोनों जो हैं ये अयुत सिद्ध हैं, माने एक दूसरे के बिना ये दोनों इनकी स्थिति नहीं हो सकती है। तुरी पटयोस्तु न समवायः, और तुरी आदि जो था, तुरी बेमा आदि और पट, इसमें न समवाय, इसमें समवाय संबंध नहीं होता, क्योंकि अयुत सिद्धत्व अभावात्, क्योंकि इसमें अयुत सिद्धत्व नहीं है, ये दोनों तो युत सिद्ध हैं, माने अलग अलग होकर के भी सिद्ध रहते हैं, सिद्ध रहना मतलब सत्ता रहना, तुरी माने विनाश न होना। तो तुरी और पट जो है ना, पट मान लो इस कमरे में है, तुरी उस कमरे में है, दोनों तुरी भी है और पट भी है, विनाश नहीं होता ना, तो ये इनमें अयुत सिद्धत्व का अभाव है, इसलिए इसमें समवाय संबंध नहीं होता। न ही तुरी पटाश्रिता एव अवतिष्ठते, तुरी बेमा जो है वह पट पर ही आश्रित होकर के तो स्थित नहीं रहता है। इसी तरह से नापी पटः तुरी आश्रिता, पट भी जो है तुरी पर आश्रित होकर के ही नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। तो अतः तयोः संबंधः संयोग एव, इसलिए दोनों का संबंध जो है वह संयोग ही है। तदेवम तंतु समवेतः पटः, इस तरह से पट जो होता है वह तंतु से समवेत होता है, माने तंतु में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, पट तंतु में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तो शुरू में जो इन्होंने कहा था तंतु समवेता पटाह, उसी को सिद्ध करने के लिए इतनी सारी व्याख्या का जो है ना ग्रंथकार ने यहाँ पर उपयोग किया। इस तरह से समवाय संबंध जो है उसका अब उपसंहार कर रहे हैं कि यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, जिस कारण में समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण कहलाता है। अतः तंतु एव समवायी कारणम पटस्य न तु तुरी आदि, इसीलिए तंतु ही जो है समवायी कारण है पट का, तुरी आदि का समवायी कारण नहीं है, वह तो निमित्त कारण है। पटश्च स्वगत रूपादेह समवायी कारणम, ऐसा है कि तंतु और पट इन दोनों में पट कार्य है और तंतु कारण है। तंतु कौन सा कारण है तो समवायी कारण है, ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया तंतु और पट में कि पट जो है कार्य है और तंतु समवायी कारण है। अब पट में रहने वाला जो रूप है जैसे नीला पीला काला हरा, ये जो रूप है इस रूप, यह जो रूप है इस रूप के प्रति कौन सा कारण होता है। अब जैसे पट रूप के प्रति समवायी कारण कौन होगा, ये प्रश्न है। पट के प्रति समवायी कारण तो तंतु है, लेकिन पट में रहने वाला जो रूप है नीला पीला वाला रूप रंग कलर, उस कलर का समवायी कारण कौन है, तो कहा कि पट कारणम, पट रूप का जो है पट समवायी कारण होता है। इसी का पटश्च स्वगत रूपादेह, स्व से पकड़ लें किसको, पट को, तो पटगत रूपादेह, गत माने रहने वाला, तो पट में रहने वाला जो रूप आदि है उसका समवायी कारण जो है वह पट ही होगा। ऐसे ही एवं मृत पिंडोपी घटस्य समवायी कारणम, मृत पिंड, मृत कहते हैं मिट्टी को और पिंड कहते हैं गोला को, तो ऐसे ही मिट्टी का जो गोला है वही घटस्य समवायी कारणम, वह घट का समवायी कारण होता है। और घट में रहने वाला जो रूप है उसका घट रूप का समवायी कारण कौन होगा, तो घट जो है समवायी कारण होगा। जैसे पट रूप का समवायी कारण पट होता है, ऐसे ही घट रूप का समवायी कारण घट होता है। इस तरह से समवायी कारण का जो है इन्होंने यहाँ पर दो उदाहरण बताए घट और पट को लेकर के, कि पट का समवायी कारण तंतु है और पट रूप का समवायी कारण पट है। ऐसे ही घट का समवायी कारण मृत पिंड है और घट रूप का समवायी कारण जो है वह घट रूप का समवायी कारण जो है वह घट है। तो आज का पाठ फिर यहीं रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।